ووداعنا انکا وزرا، کیا ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتار نہیں دیا؟ آپ دیکھیے کہ یہاں اگر اس بات کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بوجھ نہیں ہوتا قرآن، لیکن بعض دفعہ اس کو بوجھل بنا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، اس کو اخذ کرنا اتنا بوجھل کر دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کورا چٹا ان پڑھ بندہ بھی قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کر لیتا ہے، جس کو ایک لفظ نہیں لکھنا آتا وہ بھی پورے ٹیسٹ دے لیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سینہ کھل جائے، پھر بوجھ آسان کے آسان ہو گئے، پھر ایک انسان حقیقت میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جتنا اللہ بندے کا ساتھ دیتا جاتا ہے اتنا یہ بوجھ آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ انقص کے کچھ معنی نوٹ کیجیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پشت کو توڑ دیا تھا۔ تو الوزر کس کو کہتے ہیں؟ الحمل الثقيل، بار گرام، بہت بھاری بوجھ کو وزر کہتے ہیں۔ انقص کیا ہے؟ اسکل، بوجھ، ثقل کہتے ہیں نا بوجھ کو، سا سے۔ اسکل ظہرہ، ایسا بوجھ جو پیٹھ کو بوجھل کر دے۔ اسی طرح انقص کہتے ہیں کسی چیز کے لاغر اور دبلا ہونے کو۔ اس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو دبلا اور لاغر کر دیا، کیونکہ مسلسل کام تھا اور کنٹینیوس کام تھا، اور اس سے گوشت دبلا ہوتا ہے۔ بڑی پیاری اس کی وضاحت ہے ایک ڈکشنری میں، کہتے ہیں کہ پہم سفر، چھٹی ہے ہی نہیں، گیپ ہے ہی نہیں، چینڈ ورک، ایک کام ختم دوسرا، دوسری جگہ ختم تیسرا۔ دیکھیں ہم کام بھاری جتنا بھی کر لیں، لیکن ہمیں بیچ میں ایک دو گھنٹے کا آرام مل جاتا ہے، ہم سو جائیں، چائے پی لیں، کھا لیں، ہم پھر دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستوں میں کبھی اتنا موقع نہیں ملتا۔ ہر وقت سٹریس، ہر وقت سٹریس۔ صرف کل کا ہم دن دیکھیں نا، میں تو سب سے ریلیکس ہوتی ہوں کیونکہ میں نے صرف پڑھانا ہوتا ہے، لیکن جو آپ ساتھیوں کی کوششیں ہوتی ہیں اور جن کو میں صبح شام دیکھتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس تو پھر بھی ریسٹ ہے کہ میں سو بھی جاؤں گی گاڑی میں بھی، میں کھا بھی لوں گی، میں اپنے کام بھی کر لوں گی، لیکن اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس تو وہ وقت ہی نہیں ہے، یا کسی نے اگر سامان اٹھایا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یعنی کنٹینیوسلی اگر ہم کل صبح کی کلاس کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی آپ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں کے کام کاج کر کے ہی آتے ہیں نا، پہلے کلاس ہم نے کل اس طرح کے ماحول میں کی کہ ریئلی میں نے انجوائے کیا۔ ہمارے چاروں طرف آپ کی وہ مارکیٹ کا سامان تھا، اور بیچ میں اوپر جا کے دیکھیں جو خالی جگہ تھی وہاں ٹھسی ہوئی تھی لڑکیاں، ماشاء اللہ پورا ہال بھرا ہوا تھا، اور چاروں طرف وہ دنیا تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ انہوں نے کیا کہ سر، مجھے پتہ چلا کہ ایک دن پہلے 9 بجے کے پہلے گئی ہیں، تو آپ نے کل بہت کچھ مس کیا۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں دیکھنے، خریدنے یا ہیلپ کے لیے آپ کی باری نہیں لگی ہوئی تھی نا، ریئلی بہت کچھ مس کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کو فون کر کے کہوں ایک دفعہ اس منظر کو دیکھ لو، اور آج میں آتی سیدھا اوپر گئی ہوں کہ وہ رکھا ہوا کہ نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیے گا نہیں، 200 تو جوتوں کے جوڑے پڑے ہوں گے شاید، پرس، کھانا، کپڑے، ہر چیز جو دنیا کی جائے، اور اس کے بیچ میں ہم نے کلاس کی۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کل الفت پہ، اتنی خوشی ہوئی، یقین کریں میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح ہم بالکل بیچ میں تھے، پیچھے ہمارے ٹیبل تھے، انہوں نے اوپر وہ جیسے یہ لائٹ ہے اس کے ساتھ ایک کپڑا لٹکا کے اس کو اسکرین بنا کے پروجیکٹر چلایا ہوا تھا۔ اللہ نظر سے بچائے، اللہ سب کو نظر سے بچائے، حاسدوں سے بچائے۔ یعنی ہر چیز ویسے ہی جہاں ہونی چاہیے، چھوٹی کپڑوں کو لٹکا کے اسکرینیں بن رہی ہیں، تھوڑی اسکرین وہاں ہوئی، اتنی آرگنائز چیزیں لگی ہوئی تھیں، پر سارے اکٹھے، جوتیاں ساری اکٹھی، کپڑے اکٹھے، سب کچھ، اور اس کے اندر پھر یہ پورا سیٹ اپ، ہمارا پورا وقت لغت کا پروجیکٹ چلتا رہا۔ کتنے نان مسلم آئے، میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آج آپ انگلش کے سانگ چلائیے، کوئی بھی اللہ کی بات، کوئی بھی، یہ تو سمجھے۔ اور جب تک میں گئی ہوں الحمدللہ ہماری آڈیو چل رہی تھی، ہمارا لغت چل رہا تھا۔ یعنی مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں کہتی ہوں اللہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے کہ آپ ان کو جگہ دیں۔ کوئی ہراس نہیں، کوئی خوف نہیں، یہ نہیں کہ ڈبہ ہی کوئی نہیں پاس، باکسی کوئی نہیں پاس، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا۔ اور کل کتنے غیر مسلم ہماری اس جگہ سے گزر کے گئے، میں سوچتی تھی ادھر ادھر نہ دیکھیں پردوں کے پیچھے کدھر ہے کیا، شکر ہے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی وہ لپے مارکیٹ کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سٹریس، پھر وہ کلاس پوری ہوئی، پورے وقت پہ پوری ہوئی کلاس، بلکہ 5 منٹ پہلے ہی میں نے شیئرنگ کی بات کی تو سبا جو اس کی انچارج تھی تو انہوں نے کہا کہ استاذہ ہمیں بہت کام ہے، तो 5 मिनट छोड़ दे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। शेयरिंग हुई, उसके बाद वहीं बैठे ये दुबली पतली बच्ची हैं सारी। इन्होंने झट झट में उसी पूरी जगह को भी खाली किया, क्योंकि बाहर से लोग भी आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चला। और जब वो ऊपर का पूरा कारपेट रैप करते हुए और उसको खींचते हुए मैंने 2-3 लड़कियों को देखा, मैं हैरान थी, ये ताकत कहाँ से आती है? यकीन करें ये शरे सदर से आती है, लपेट के, क्योंकि लोग आना शुरू हो रहे थे। और उसके बाद हमारा, सच्ची बात है, दिल ही नहीं जा रहा था मौस जाने को। हमारी मौस की ड्यूटी थी, हमने वहां पहुंचना था, लेकिन शुक्र बीच में वक्त था और काम शुरू हो गया। हर बंदे ही लगा हुआ था, आपने से भी बहुत सारे साथी थे माशाल्लाह। और जब हम यहाँ से निकले तो ऑफकोर्स जब पहले टाइम कम था, तो फिर गाड़ी का ट्रेवलिंग टाइम, मौज का जो 1.5 घंटे का रास्ता है, हमेशा ही हमारा अल्लाह ताला 45 से 50 मिनट में करा देता है। वहाँ पहुँचे अल्लाह के हुक्म से, वहाँ गए तो इतने बेहतरीन तरीके से वहाँ एक बच्ची को अल्लाह ने चुन लिया है। उसने हमारे जाने तक पूरा एक लेक्चर सुनवा के, डिस्कशन करा के, वो एक पावर पॉइंट दिखा के ब्रेक दी हुई थी लोगों को। फिर हम ब्रेक में बैठे, खाया पिया, जो भी खा रहे थे लोग, यानी फिर उनसे बात, फिर पिछले वीक का उनका जो मौस का जो मीना बाजार था उसको डिस्कस किया। लेकिन मुझे तो लग रहा था हर दिन नई खबरें, इतना एक्साइटमेंट तो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं था जितना दीन से आ गया। ऐसे ही मुझे तो आजकल लग रहा है, हम एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं ना कि अच्छा वहाँ काफ़िला गया था, वहाँ क्या हो रहा है। यानी पीछे की भी फिक्र थी कि इधर बाद में क्या हुआ, उनको हमारी फिक्र थी। जैसे नबी सल्लम के दौर में होता था, छोटे छोटे काफ़िले भेज देते थे, एक ही मैयत में एक काफ़िला गया दूसरा। अब वहाँ ना सेलफोन थे ना पेजर थे, वरना हम जैसे होते तो वो तलवार छोड़ के सेलफोन पर बात कर रहे होते। तो वहाँ भी खबरें होती, तभी तो मदीना में खबरें फैल जाती थी, पता नहीं उस काफिले के साथ क्या हुआ, पता नहीं जीते हैं। मुनाफिक कहते थे मर खप गए होंगे, और ईमान वाले कहते थे नहीं, माले गनीमत ला रहे होंगे। आजकल बिल्कुल हमारे साथ यही कैफियत हो रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक नया एक्साइटमेंट। तो पीछे का जो दिन था सैटरडे का, वो स्ट्रोमन क्लास का था, वहाँ भी आप देखिए कि वहाँ भी एक नया महाज है। हर जगह आप देखेंगे ना, अल्लाह ताला ने लोगों के हिसाब से चीज़ें तैयार की हुई हैं। तो ये कहाँ से शरह सदर होता है, ये सब कुछ कर करा के सब कुछ अल्लाह ताला पूरा कराता है, और फिर भी उसके बावजूद आप देखिए कि सारे काम हो रहे हैं वक्त पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये काम होते हैं, तो अल्लाह बोझ को आसान करता है। लोग सोचते होंगे ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल नहीं होता। और हिम्मत, ताकत, एनर्जी, और कई लोग हैं जो इसके बीच में जो रात आती है उसमें जॉब भी करते हैं, सोते होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये काम करते होंगे वहां जाके। लोग कहते हैं दीन के काम से लोग थकते हैं, मैं कहती हूँ दीन के काम से सुकून, खुशी इतनी मिलती है कि थकन ही होती, एक्साइटमेंट इतना होता है। आज के जो प्लान है वो रात को सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। तो ये सब कुछ क्या है, ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के कामों की बरकत है, हम में से किसी की नहीं। ये जो दुबली लड़कियाँ या बड़ी औरतें या घर की जिम्मेदारियाँ करने कराने वाले लोग, ये किसी की कोई तौफीक नहीं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये अल्लाह करता है। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, कमर टूट जाती है हमारी इस प्रोजेक्ट में अगर अल्लाह आसान ना करता। आपको लगा ये मुश्किल हुआ हमारे लिए वक्त? आज हम यहाँ हैं, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, चंद दिन के बाद हमें अल्लाह जगह दे देगा ना, अल्लाह ने चाहा। तो बाद में आप सोचेंगे क्या आपको मुश्किल लगा ये सारा प्रोजेक्ट, ये कुरान का सफ़र मुश्किल लगा? ऐसे लगता है पलक झपकते, मैं जिसको बता रही हूँ, मेरे साथी जो अमेरिका में बातें होती हैं, कहाँ मैं उनको बताती हूँ कि कुरान पूरा हो रहा है हमारा, तो वो हैरान होते हैं पूरा हो गया। अभी तो ऐसे लगता है कि पलक झपकते की बात है, ये सिर्फ अल्लाह के काम है। हम रास्ते बनवाते हैं, असल काम अल्लाह करवाता है। जैसी नीयत करेंगे, जितना बड़ा आज़म करेंगे ना, आज यहाँ बैठ के अपने अगले दिनों का, अगले दिनों से मुराद कल जिंदगी का आखिर तक, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, अल्लाह आपसे उतने बड़े बड़े काम कराएगा। और रहम खाएंगे खुद पे तो रहम ही खाते रहेंगे, तर्स खाएंगे मजबूर, हाय बेचारे अभी तो असाइनमेंट्स आनी है। दीन का काम करने वाला कभी खुद पे रहम ना खाए, वरना लोग भी आपको कहेंगे पीली हो गई और नीली हो गई और मोटी हो गई हो। सिर्फ लोग उनको बातें करके सुनवाते हैं जो खुद सुनाते हैं, कुछ भी नहीं है ठीक। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आपकी कमर सीधी कर दी, वरफान अला का जिक्र, ये मरहला बाद में आएगा आप लोगों पे, अभी नहीं आया। दीन सीखने के दिन जो होते हैं ना, ये खुद को मारने के दिन होते हैं। बंदा हालों बेहाल हो जाता है, कपड़े नहीं 2 से ज़्यादा जोड़े लगाता कि क्या करना है, जो धुला वही पहन लेते हैं, तय करके लगाना पड़ेगा, जो लटका है वही पहन लेते हैं, चलो छोड़ो क्या पता किसी को क्या, जो भी ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि फिर इंसान को दीन देता है, सब कुछ देता है। हज़रत अबू हुरैरा कहा करते थे कि तुम क्या थे, बकरियों के पीछे फिरते थे, राज लोग तुम्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं, और अगर आप जमे रहे तो आप में से अल्लाह करे हर एक ही किसी न किसी तरह अगले दिनों में इस दीन के नाम पे इस शहर में खिदमत कर रहा होगा। मत सोचिए कि सब इस कुर्सी में इस पे बैठ के खिदमत करते हैं। दरवाजे पे बैठने वाले तो पहरा दे रहे होते हैं, जूते रखने वाले तो इस्लाम के खूबसूरत मिजाज दे रहे होते हैं, कंप्यूटर सबका हिस्सा बराबर का है। कोई फ्रंट डेस्क पे बैठ जाए, कोई टीचर टेबल पे बैठ जाए, कोई किचन में बैठ के सफाई करता रहेगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं सारे। तो आपको तो आज नहीं पता, कल पता नहीं लोगों ने किस किस का नाम लेना है आप लोगों के नाम के साथ कि वो फलां बाजी हाँ वो दर्स देती हैं। वरफान अल्लाह का जिक्र, खुद ही नाम बुलंद हो जाएंगे। कुछ लोग दुनिया में बड़ा बनने के लिए इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, हालांकि हदीस में आता है कि इल्म बंदे की शान बुलंद करता है, चाहे वो शान जूते सही करके उठाए या झाड़ू उठाए या कलम उठा ले। तो असल बात है कि बुलंदियों के लिए करना नहीं, लेकिन मिल जाएंगी बुलंदियाँ, लगे रहेंगे। तालिब इल्मी का दौर जो होता है ना, ये बड़ी कसम कुर्सी का दौर होता है। अगर आप अपने दुनिया के पढ़े हुए दौर को सोचिए तो कितनी रातें जाग के इंसान डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर्स की शान देखा करें, क्या वाइट स्कार्फ पहन के वाइट गाउन पहन के फिर रहे हैं, टुप टुप करते हुए हॉस्पिटल के लॉन्जेस में जा रहे हैं। कुछ से पूछे ज़रा वो वक्त सुनाओ जिसने सुबह एनाटॉमी का पेपर था, हो गया ना वरफान अल्लाह का जिक्र। तो दुनिया में होता है तो आखिरत में क्यों नहीं होगा, बस करें क्या, इन नमाल उसरी यसरा का इंतज़ार करें, हर यसर के साथ आसानी है इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी को जिस दौर में ये आयात बताई गई थी, आज भी इसी के मुताबिक आप देखिएगा कि हर आने वाला दिन इस्लाम के लिए अब इज्जतों का है, बुलंदियों का है। और मैं सोचती हूँ कि जब किसी जगह, यानी जैसे इस शहर में आपका ये फर्स्ट बैच है, आप लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी होंगी, आपकी कई जगह हक तलफी हुई, आपको नहीं पता चली होंगी, हमें पता है कि हमें क्या करना था, हम इतना भी नहीं किए। हर आने वाला कोर्स आप देखेंगे आगे से आसान होगा, आगे से ऑर्गेनाइज्ड होगा, आगे से अच्छे होंगे। जैसे आप कहानियाँ सुनते हैं वीकेंड क्लास की सबीलुल हुदा की, सबीलुल हुदा वाले आप उससे अगले कोर्स रमज़ान के बाद शुरू होंगे, उसकी कहानियाँ सुनेंगे। हमारे वालिद कहा करते थे कि बच्चे हमेशा माँ बाप से अक्लमंद होते हैं, आने वाली पौध हमेशा पहले से अक्लमंद है, ऑर्गेनाइज होगी, सब कुछ होगा। आप जो चीज़ बैठ के सोच रहे होते हैं वो कोई भी ज़रा अच्छा सा जहन रखने वाला फ़ौरन उसका कोई सिस्टमेटिक हल निकाल के दिखा देता है। तो हर चीज़ वक्त के साथ बढ़ती जाती है, आसान होती जाती है, शर्त यह कि बंदा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ रखे। फ़ैज़ा फ़र्क तफ़नसब, मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में खड़े हुए दिखते हैं। सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लम ने सब लोगों को उनकी जगहों पे लगाया, ये नबी सल्लम की बहुत खूबी थी, खुद गाफिल होकर घर में नहीं सो जाते थे। और अच्छा लीडर जो है ना, वो जूतियों के स्टैंड पर भी खुद जाएगा, किचन में भी खुद जाएगा, बाथरूम भी जाके खुद चेक करेगा। अल्लाह के नबी ने गज़वे बदर में सारे लोगों की जगह रखी और उसके बाद अरीश में आ गए, ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से आपको पूरे लोग देख रहे थे, और आप कुछ नहीं कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि अगर आप करने लग जाते तो फिर करवाते कैसे, करवाने वालों को तो करना नहीं होता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते कि मैं फिर देख रहा था कि अल्लाह के नबी इतनी आजिज़ी से इबादत रो रहे हैं, वही की वो दुआ है ना कि अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से ये 313 मूर्ति जमा किए, अगर आज ये चले गए तो क्या बनेगा। अल्लाह के नबी वहाँ फन सब थे। लीडर्स का काम क्या होता है कि वो इबादत करके अल्लाह की मदद को लें, वो प्लानिंग करें, लोगों से काम कराएं, उनकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, वो नफलों में है, वो इबादत में है, और जो काम करने लें वो जियालों की तरह काम करें, ये कामयाब तरीका है। और लीडर्स हो जाए जाके घरों में और उनको पता ही कुछ नहीं कि कर क्या रहा है, और वो कहें नहीं वो तो मैं आज शादी में जा रहा हूँ, चलो आप लोग जाके जंग करके आ जाएँ, फिर जंगे नहीं होती। फ़ैज़ा फ़र्क तफ़नसब, लफ्ज़ कितना अजीब है कि फ़ारिग जब हो जाए तो फिर मेहनत करें, ये जो लफ्ज़ है ना फ़नसब, इसको भी देख लीजिएगा। नसब किसको कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में कोई मेहनत कोई कुछ नहीं होगी। नसब ऐसा काम करना जिसके करने से थकावट हो जाए, तो ये मामूली काम नहीं होते, यानी मामूली नौयत के कामों से तो थकावट पैदा नहीं होती। तो फनसब कहते हैं वो काम जो उलुल अजमी से किए जाएं, अजम के साथ, वो मुहिमें, मुहिम जो होती हैं टारगेट्स, जो बड़ी मेहनत और रियाजत से सर की जाती हैं, वो फराइज जिनकी अंजाम दही के लिए जिगर बाशियों और शब बेदारियों की ज़रूरत होती है। اور آنکھیں اللہ کے راستے میں بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، حق کے راستے کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے۔ مشکل باتیں ہیں لیکن آسان ہو جاتی ہیں اس بندے کے لیے جس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مومن کے لیے کوئی فراغت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک کام سے فارغ ہوتے تھے تو دوسرا تیار، ایک جنگ سے نکلے تو دوسری جنگ سامنے ہے، ایک محاذ سے فارغ تو دوسری طرف تیار۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو مکہ والوں سے ذرا امن کی امید ہوئی تو آپ نے غیر مسلم بادشاہوں کو دعوتیں دینی شروع کر دیں، وہاں سے آئے تو فتح مکہ کا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ مسلسل جہد مسلسل، ایک کام ختم ہونے سے پہلے اگلی دے دیں۔ فراغت میں کوئی محنت نہیں ہوگی نا تو آپ یاد رکھیے کہ لوٹ جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اب اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس پہ محنت کر سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اور اس میں نفس کی راحت نہیں ہے۔ دین کے کام جسم کے آرام اور نفس کی راحت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دل بڑا مطمئن ہوگا آپ کا، لیکن ہاتھ کام کر رہے ہوں گے، آنکھیں کام کر رہی ہوں گی، کان کام کر رہے ہوں گے، اس وقت پھر آپ اس آیت کو یاد کریں گے۔ اب ایک دفعہ اس کی تلاوت سنتے ہیں سب مل کے، اور جو اس کا مفہوم ہے اس کو دیکھیں کہ ہم نے جذب کیا کہ نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔